अर्पा रेडियो द्वारा प्रस्तुत है टॉक चीट विद अरुण सीजन वन में सुनिए देश के अलग अलग शहरों के रंगमंच कलाकारों के साथ रंगमंच से जुड़े विभिन्न विषयों पर सामूहिक बातचीत।
नमस्कार, सलाम, जय जोहार। अर्पा रेडियो के कार्यक्रम टॉक चित विद अरुण सीजन वन में मैं अरुण भांगे आप सभी रंगकर्मियों और श्रोताओं का स्वागत करता हूं। हम अपनी टॉक चीट शुरू करें इससे पहले आप सभी को कार्यक्रम में शामिल रंगकर्मियों का परिचय दे दें। आज की टॉक चीट में शामिल हैं
विनोद गोहिदार जी, जो रायगढ़ छत्तीसगढ़ के हैं। रायगढ़ इप्टा में लगभग 30 वर्षों से ये लगातार रंगकर्म कर रहे हैं। रायगढ़ इप्टा के सक्रिय सदस्य हैं। 50 से अधिक नाटकों में इन्होंने अभिनय किया है। बहुत सारे नाटकों को इन्होंने निर्देशित किया है। विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित शॉर्ट फिल्म मोर मन के भरम, इस फिल्म में काम किया है। साथ ही फीचर फिल्म छुटपन की महाभारत और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म न्यूटन में भी इन्होंने काम किया है। इन सब के साथ में शासकीय सेवा में कार्यरत भी है।
अर्पा रेडियो के सुनने वाले सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार।
और सत्येंद्र रावत जी जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। इनकी जन्म स्थली कर्म स्थली जबलपुर ही है। ये पिछले 19 सालों से आकाशवाणी में बतौर कैजुअल अनाउंसर सेवा दे रहे हैं और साथ ही रक्षा विभाग में भी ये सेवा दे रहे हैं। रंगमंच से इनका काफी लगाव है। कविताएं, कहानी, नाटक, गीत, गजल पढ़ना इनको अच्छा लगता है और साथ में ये कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, नाटक लिखते हैं। सत्येंद्र रावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद अरुण जी, और अर्पा सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
और हमारे साथ हैं शुभम बारी। शुभम बारी जी सतना मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वर्तमान में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं नाट्य विभाग से ही। स्थायी रूप से ये लोक रंग थिएटर सतना में बतौर निर्देशक कार्यरत हैं। इनका एक सपना है कि देश दुनिया की जो पॉलिटिक्स है, पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें किसी एक व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी होती है या उसकी क्या ताकत होती है, ये लोगों को ये बताना चाहते हैं और इस पे काम करना चाहते हैं। शुभम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अर्पा कम्युनिटी रेडियो में।
शुक्रिया अरुण जी, और अर्पा की इस पहल के लिए मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ
जी। शुक्रिया। सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार और आप सबका भी स्वागत है। आज का हमारा विषय है, वर्तमान में जो हमारे दर्शक हैं नाटक देखने अगर आते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको कुछ सार्थक दें। वैसे तो दर्शकों की पसंद नापसंद 100% जान पाना बड़ा मुश्किल है। थोड़ी हिम्मत कर रहे हैं इस पे बात करने की कि आजकल के दर्शकों के हिसाब से हमको किस तरह के नाटक खेलने चाहिए, किस तरह के नाटक करने चाहिए, जो दर्शक आ रहे हैं नाटक देखने के लिए सार्थक रहे उनके लिए नाटक देखना। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सत्येंद्र जी खुद लिखते भी हैं और निर्देशित भी करते हैं, अभिनय भी करते हैं, तो सत्येंद्र जी आप अपनी बात रखें सबसे पहले।
भांगे जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि हमें सार्थकता को परिभाषित पहले करना पड़ेगा दिमाग में हमारे
जी,
क्योंकि सभी लोगों के लिए सार्थकता अलग अलग मायने रखती है। हम एक दर्शक समूह से कभी अपेक्षा नहीं कर सकते कि आप कॉमेडी ही देखिए या आप एक संदेशवाहक कोई नाटक ही देखिए। हमारी तरफ से ये सबसे पहली कोशिश हो कि हम एक ऐसा मंच करने जाएं जहां पर उसे समग्र रूप से सब कुछ मिले, क्योंकि अगर एक परिवार से निकलकर चार बंदे आ रहे हैं, चार परिवार के सदस्य हैं जिनमें बच्चे भी हैं और एक युवा वर्ग भी और माँ बाप भी हैं मान लीजिए, तो उन चारों का टेस्ट अलग अलग होगा
जी। बिल्कुल।
तो सार्थकता में हम किस चीज को लेकर चल रहे हैं, क्या हम उन चारों के लिए कुछ ऐसा मटेरियल तैयार कर रहे हैं जो उसी में समाहित हो जाए एक नाटक में, या यदि हमने एक बार एक नाटक में किसी के लिए कुछ परोस दिया, दूसरे नाटक में किसी के लिए कुछ परोस दिया, तो या तो ये प्रयास हो जाए ताकि एक बार एक सेटिस्फाई होके जाए, एक दूसरी बार दूसरा सेटिस्फाई होके जाए। विषय वस्तु का जो चयन है उस पर, विषय वस्तु के चयन में हमें प्रस्तुति इस तरह से देना है मेरे हिसाब से, मैं जो प्रयोग करता हूँ उसमें, कि अगर कोई गंभीरता भी है तो उसमें कहीं कहीं हास्य का पुतले आए या कहीं कहीं सस्पेंस, जो नाटक के मूल तत्व हैं जिनमें रहस्य भी है, जिनमें हास्य भी है, वो एक नाटक में समाहित करने हैं यदि हम लोग किसी भी एक विषय वस्तु के नाटक में, तो मेरे ख्याल से ये अधिक प्रभावशाली होगा
जी। सत्येंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात की कि सार्थकता क्या है उसको सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि वो दर्शकों के लिए क्या सार्थक होगा, और सबकी अपनी अपनी सार्थकता हो सकती है, सबके अपने अपने मायने हो सकते हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आपका बड़ा लंबा अनुभव रहा है नाटक करने का भी, और साथ में आप देख भी रहे हैं बहुत सारे नाटक, लगातार आप लोग नाट्य समारोह कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर का, बहुत अलग अलग तरह के नाटक, बड़े बड़े नाटक, जाने माने कलाकारों के नाटक और बड़े बड़े लेखकों के नाटक आप लगातार देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लंबा अनुभव है आपका, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे?
देखिए, जहाँ तक दर्शकों को अच्छा लगने वाला नाटक है तो ये जरूरी है कि जब हम नाटक भी खेल रहे हैं वो दर्शकों को अच्छा लगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसा नाटक खेलते हैं जो उनकी समझ में नहीं आता, लेकिन हमारे द्वारा लगातार जो रंग महोत्सव, जो खासकर हम लोग जो नाट्य समारोह कर रहे हैं, उससे एक दर्शक वर्ग ऐसा पैदा हो गया है जो कि समस्त नाटकों को, गंभीरता को भी समझिए, थोड़े से हास्य को भी और थोड़ा सा जो सरलपन है उसको भी सरकता से स्वीकार करता है। इसलिए आपने देखा होगा, आप भी कई नाटक में आए, नाटक नाट्य समारोह में आए हैं, तो दर्शक जो है वो बैठा रहता है, उठ नहीं जाता, भले ही वो कितने भी गंभीर क्यों ना हो। व्यक्तिगत मेरा मानना ये है कि मैं कस्बाई रंगकर्म के बारे में बात करूंगा, क्योंकि महानगरीय रंगकर्म का थोड़ा सा अलग वो है, और कस्बाई रंगकर्म में ये है कि जो दर्शक है वो हमसे जुड़ा हुआ रहता है, वो हमारे परिचित का होता है, कई बार
हमारे आसपास का
दूसरे का, जी जी जी, तो वो उस नाटक को देखने आता है। लेकिन जब हम उनके सामने नाटक करते हैं तो नाटक समग्र रूप में होना चाहिए, जो कि आपकी समस्याओं को भी जो बताए और दर्शकों को हल्के से गुजराए और संगीत का भी प्रयोग हो, जिससे कि एक संपूर्ण नाटक तैयार होता है और वो नाटक ज्यादा दिनों तक दर्शकों को याद रखता है, दर्शक उसे याद रखते हैं और कहीं से उनके अनजाने में उनके मन में घर पड़ जाता है। और हमारी कोशिश भी होती है कि यदि दर्शक जो देखने वाले हैं उनके मन में, दर्शकों में से एक दर्शक के मन में भी यदि कोई सवाल उठे तो हमारी उसी में समझिए कि वो हमारा नाटक का जो हमारे सार्थकता होगी।
बिल्कुल, कुछ सवाल छोड़ता हो दर्शकों के बीच में, कुछ ऐसी बात हो कि दर्शक सोचने पे मजबूर हो जाए, ऐसे नाटक करना भी जरूरी है और नाटक तब हमारा सफल हो पाता है। विनोद जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी है, इसके लिए
मैं एक बात छोटी सी जोड़ना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात विनोद जी कहने कही है।
हाँ,
एक बात जो मैं जोड़ना चाहता हूँ वो ये कि जो रेलेवेंसी है, रेलेवेंसी से जो अभी समाज में घट रहा है, हमने अगर इससे अगला नाटक जो भी दर्शकों के सामने जाएगा, जैसे विनोद जी कह रहे हैं, अगर हमने कहीं भी उसके बारे में किसी प्रकार से सांकेतिक रूप में भी कुछ कह दिया, वो रिलेट करता है लोगों से, तो वो रिलेटिविटी जो है ना, वो हर एक प्ले में मेरे ख्याल से हम यदि जान पाए
तो समसामयिक ऐसा हो जिससे दर्शक खुद को जोड़ पाए। कुछ बहुत ऐसा भव्य दिखा रहे लेकिन वो दर्शक ही अपने आप को नहीं जोड़ पा रहा है, तो फिर
हाँ बिल्कुल 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 यही है
जी, बिल्कुल दर्शक को जोड़ना तो बहुत ही जरूरी है और वो आ रहा है तो जुड़ने के लिए ही आ रहा है। तो शुभम जी सतना से हैं, वो अब अपनी बात रखें कि वो क्या सोचते हैं पूरे मुद्दे पे।
जो आज का हमारा टॉपिक है कि दर्शकों के लिए किस तरह के नाटकों का प्रयोग होना चाहिए, तो इसको हम दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं। पहला दृष्टिकोण है जो निर्देशक की दृष्टि से देखा जा सकता है और दूसरा है दर्शकों की दृष्टि से, क्योंकि निर्देशक है वो एक नाटक करने से पहले निश्चित रूप से सोचता है कि ये दर्शक को पसंद आएगा या नहीं आएगा, या दर्शकों के लिए लाभकारी होगा या नहीं होगा।
जी,
तो मूलतः किसी नाटक में तीन प्रकार की चीजें देखी जा सकती हैं कि एक नाटक एक सामाजिक, मानसिक और वैचारिक दृष्टिकोण क्या है।
बिल्कुल,
तो इन तीनों चीजों को देखते हुए कि ये किस प्रकार से दर्शकों पर प्रभाव डालेगा, दर्शकों पर इसका प्रभाव होगा, इन तीनों दृष्टिकोणों को एक निर्देशक देखता है। फिर उसके बाद एक जो अभी हाल ही में सत्येंद्र जी ने अपनी बात में जोड़ी थी, जो वस्तु होनी चाहिए वो समसामयिक होनी चाहिए, एक करीब कोई रेलिवेंट इशू होना चाहिए जिस पर हम दर्शकों को जल्दी कनेक्ट कर पाए। फिर जॉनर कुछ भी हो, फिर वो या एक्सपेरिमेंटल हो सकता है या फिर वो ट्रेडिशनल थिएटर हो सकता है या क्लासिकल थिएटर हो सकता है, किसी भी प्रकार के मतलब जॉनर में हम अगर समसामयिक वस्तु को अगर जोड़ते हैं तो वो दर्शकों से जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर दर्शकों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए इसी चीज को, तो दर्शकों के दृष्टिकोण से दो तरीकों से काम करता है, एक तो फैमिलियर यानी परिचित वस्तु होनी चाहिए और एक ये स्ट्रेंज यानी अपरिचित, जिसे हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि रोमांच भी कह सकते हैं। अच्छी दर्शक जब एक नाटक देखने के लिए आता है तो उसे कोई परिचित वस्तु मिलती है और उसे देखकर ही खुश होता है कि हाँ ये इसके बारे में मैं इसे अच्छे से समझ पाया। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम उसको एक अपरिचित वस्तु से परिचय उसका कराएं, एक रोमांच पैदा करें उसके अंदर। दो तरीकों से इसका चयन किया जा सकता है कि जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है हम उसे भी दिखाएं और किसी अपरिचित वस्तु से उनको परिचय कराएं, और इसका बैलेंस हमें बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है
जी।
आप मेरा ये मानना है
जी 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 विनोद जी,
हमें मीटिंग निमंत्रण करना होगा कि हमारे दर्शक किस तरह से आ रहे हैं।
हाँ, दर्शक वर्ग क्या है ये तो जरूरी है हमारे लिए सोचना।
जैसे यदि हम इसकी बात करते हैं, यदि एकदम ग्रामीण परिवेश में आपको नाटक खेलना है जो कि हम लोग अक्सर खेलने जाते हैं, तो इसमें इतनी मतलब जो गंभीर बात भी यदि मान लो एक म्यूजिक के माध्यम से या एक जोकर के माध्यम से हल्के रूप से की जाती है तो वो ज्यादा मतलब प्रेषण हो पाता है उसका। और यदि हम इस गंभीर बात को गंभीरता से कहें तो शायद नाटक देखना इस तरह से नहीं आते हैं। ये जरूरी है कि हमारा दर्शक कैसा है, जैसे कस्बाई रंगकर्म है तो कस्बे का दर्शक कैसा होगा, महानगरी रंगकर्म है महानगर का दर्शक कैसा होगा, उनके टेस्ट के अनुसार से हमें नाटक डिजाइन करने की आवश्यकता है।
अरुण जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा।
जी जी जरूर जरूर बोलिए।
मैं दोनों की बात को एक समग्र रूप देता हूँ। दोनों की बात को अगर एक लाइन में बोले कि पहले तो दर्शकों का चयन कर रहे हैं, दर्शकों के चयन के बाद नाटक का चयन, और नाटक के चयन के बाद निर्देशक का नाटक शुरू होता है।
अच्छा, पहले मतलब हम किनके लिए नाटक कर रहे हैं ये तय कर लिया जाए, उस दिशा में ही आगे बढ़ा जाए, आपका ये कहना है?
नाटक चुने निर्देशक की अब मुझे क्या करना है सपोज
जी,
लेकिन वो एक बात ख्याल रखे अपनी टीम के साथ या किसी विशेषज्ञ के साथ या जानकार लोगों के साथ कि मैं कहाँ कर रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, और जब चयन हो जाए तो वो नाटक के कंटेंट में वो चीज की सेंध हमारी जो बात है ना, इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन बहुत मेरे को लगता है सेंध हमारी है इम्प्रोवाइजेशन। मतलब दर्शक वर्ग को देखते हुए कि मैं यहाँ पर एक हाथ का फुट डाल देता हूँ या फिर हल्का सा परिवर्तन कर देता हूँ नाटक में या छोटा सा, तो वो समसामयिकता वाली बात जो है यहाँ पे जुड़ जाएगी।
आजकल बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग हो रहे हैं, बहुत शानदार प्रयोग हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें नई नई जुड़ती जा रही हैं। प्रयोग का समय चल रहा है, एक दौर चल रहा है प्रयोगों का, इससे दर्शक कुछ ऐसा लेकर जाए कि हाँ उनको लगा था कि वो इसी के लिए आए थे। अभी आप सबसे ही बातचीत हुई, दर्शकों का एक वर्ग है, निर्देशक अपने आप में अपनी बातें रखना चाहता है, समझना ही पड़ेगा कि दर्शक किस तरह के हैं। इन सब के बीच में हम एक रंगकर्मी हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ये तो है कि दर्शक तक अपनी बात पहुंचानी है, पर अपने लिए भी हम नाटक करते ही, आप लोग अगर मंच पर हैं तो किस तरह के नाटक करना पसंद करेंगे? विनोद जी अपनी बात रखें।
देखिए, मैं जहाँ तक मैं अपनी बात बताऊँ
जी,
तो मुझे क्योंकि मैं थोड़ा संगीत क्षेत्र से हूँ और मुझे गाना और बजाना दोनों ही अच्छा लगता है
जी,
तो मैं क्या है कि लोक शैली के नाटकों का मंचन मैं करना चाहूंगा। लोक शैली है, लोक शैली के तो नहीं, लोक शैली है। जैसे ये हम आपको याद होगा, हमने एक मोंगरा जिये खावे एक नाटक किया था
जी।
मोंगरा जिये खावे नाटक में जैसा उसका पार्ट था, पूरा हिंदी पार्ट था, वैसे ही हमने पहले शो में फिल्म वैसे ही किया, चार लोगों का नाटक है मात्र, तो वो जो है लोगों को मतलब आकर्षित नहीं कर पाया। कई हमको जो बाद में उनके न्यूज मिले उन्होंने बताया कि नहीं मजा नहीं आया ये, तो इस शो के बाद हमने उसको लोक शैली में डाला। कंटेंट वही था, सब कुछ वही था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, फिर लोक शैली घुस गया उसमें। इसमें फिर सूत्रधार आया, सूत्रधार के बाद फिर उसमें आपका पांडवानी आया, पांडवानी के बाद इस तरह की सारी विधान को हमने डाला, तो वो आप विश्वास नहीं करेंगे इतना हिट हो गया कि लोगों ने मतलब मैं उसमें सरपंच का रोल कर रहा था। जैसे शहर में जाता था तो अचानक कोई आदमी मिल जाता था, अरे सरपंच जी क्या हाल है, इस तरह के। तो ये एक आप किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं और लोक शैली का ही कमाल है।
यहाँ ये फोक की अपनी पावर है, लोक जो नाट्य है उसको अपनी ताकत है उसकी, ये लोगों को ज्यादा अच्छे से जोड़ता है, ज्यादा अच्छे से कनेक्ट करता है। तो हाँ। शुभम,
तो बतौर अभिनेता मैंने अभी तक जितने भी काम किए हैं उसमें निश्चित रूप से मैं सपना से बिलोंग करता हूँ बघेलखंड क्षेत्र से, तो लोक शैली के नाटकों की भूमिका अभी तक है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने जो नाटक कम किए हैं लेकिन मेरी इच्छा है करने की, तो मैं एक्सपेरिमेंटल नाटक जो मतलब प्रयोग किए जा सकते हैं जिसमें अपने अभिनेता के पास भी एक प्रकार से छूट हो कि वो रिसर्च करके खुद के तरीकों से किस तरह से, जैसे अभी हम देख सकते हैं कि नॉन वर्बल थिएटर का काफी प्रचलन हो रहा है जगहों पर, तो मुझे लगता है कि मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज से ये जो शहरियां हैं ये मतलब हमारे छोटे शहरों में और कस्बों में आनी चाहिए, तरह के नाटक करने में मेरी रुचि है।
आप एक्सपेरिमेंटल नाटक करना चाहते हैं, विनोद जी लोक नाटकों से उनकी रुचि है। जबलपुर से हमारे साथ सत्येन जी हैं। सत्येन जी, आप किस तरह के नाटक खेलना चाहते हैं?
अरुण जी, मैं जो नाटक किस तरह के सोचता हूँ या करने की हमेशा मेरी कोशिश रहती है, वो ये कि मैं नाटक से थोड़ा ज्यादा बनाना चाहता हूँ फिल्म से थोड़ा कम, फिल्म से थोड़ा कम। दर्शक देखिए, जो आपके पास नाटक देखने आ रहे हैं वो एक बात तो अच्छे से जानता है कि फिल्मों और नाटकों में क्या फर्क है। वो लगभग इतना जानता है कि एक टेक में ये जो 1.5-2 घंटे की जो कवायद है वो चल रही है और कई हजार कटों के बाद ये फिल्म निकल कर आती है, वो जो भव्य और बड़ी स्क्रीन पर होती है। और मतलब ईश्वर की हमारी पूरी टीम की ही सोच है। हम मैंने पहले भी कहा कि हम नाटक के चयन में भी एक चुनाव का वो पद्धति रखते हैं कि ये करें कि जैसे मिर्ची कटेगा में अभी मैं पढ़ रहा था कि हमको उसको करने की बहुत ललक है। मैंने देखा कि आज से सैकड़ों साल पहले जो नाटक लिखे गए हैं उनमें सारी चीजों का उनका ख्याल रखा गया, सूत्रधार से लेकर हास्य से लेकर रहस्य से लेकर मारधार से लेकर ये सारा कुछ है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक छोटे सी जगह पर एक कुछ स्क्वायर फीट की जगह है उस पर ही हमें सारी दुनिया रचनी है। तो हम क्यों ना एक ऐसा मिरेकल पैदा करें कि वो नाटक से थोड़ा ज्यादा हो जाए, भले ही फिल्म से कम रहे, लेकिन हम इस तरह को थोड़ा सा उठा के इस तरह से काम करेंगे तो दर्शकों को जोड़ सकते वापस से।
हाँ बिल्कुल, दर्शकों के हिसाब से तो हम रखेंगे। अभी हम अपनी बात कर रहे थे, सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसी को लोक पसंद है, किसी को एक्सपेरिमेंटल पसंद है, नाटक से ज्यादा और फिल्म से कम कुछ इस तरह का नाटक करना चाहता है। सभी शैलियों का अपना अपना एक मजा है, अपना एक आनंद है। नाटक तो सभी तरह के ही होने चाहिए, नहीं तो अगर आप एक जैसे नाटक करने लगेंगे जिनके लिए कर रहे हैं वो भी दर्शक जिनको सोच के नाटक कर रहे हैं वो भी कटने लगते हैं।
वैरायटी देना जरूरी है
जी,
वैरायटी होना जरूरी है चीजों की स्थितियों में, वैरायटी होना जरूरी है
जी,
वैरायटी चाहता है।
हाँ वो उनको लगातार कुछ ना कुछ नया तो देना ही रहेगा, वैरायटी होनी चाहिए। बहुत सारी दर्शकों को ध्यान रखते हुए भी जरूरी है कि वैरायटी होनी चाहिए ताकि हर बार कुछ नया देखने को मिले, तब उनकी रोचकता बनी रहेगी, तब उनकी रंजकता बनी रहेगी, तब वो हर बार आएंगे भी। इन सारी बातों के साथ में अर्पा कम्युनिटी रेडियो के जो श्रोता हैं आप तीनों ही उनको अपनी तरफ से कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हो आपकी बात हमारे माध्यम से अर्पा कम्युनिटी रेडियो के श्रोताओं तक पहुँच पाए। सबसे पहले शुभम जी मैं आपसे बोलूंगा कि अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज।
मैं कहना चाहूंगा कि अर्पा कम्युनिटी के जो भी श्रोता है मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपके देश में जिस प्रकार से भी मूवमेंट हो रहा है उसे बढ़ावा देने की जरूरत है, आपको बताओ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की जरूरत है और यदि आप कदम रखनी है तो आपके कदम का एक उद्देश्य होना चाहिए और
जी बिल्कुल रोमांच होना चाहिए दर्शकों के लिए, कुछ नयापन होना ही चाहिए। थैंक यू शुभम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद विनोद जी से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज वो कुछ बोले।
अर्पा रेडियो को सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार करते हुए ये निवेदन करना चाहूंगा कि रंगकर्म दर्शकों के लिए भी है, आपके लिए भी है, अतः आप यदि उनकी प्रस्तुति उस समय उपस्थित हो सके तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप जो है उन्हें आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं जिनसे भी रंगकर्म जारी रहे। और यदि आप स्वयं रंगकर्मी हैं तो जो भी वहाँ पर उपलब्ध समूह है उससे आप जुड़े और नाट्य गतिविधि को सुचारू प्रदान करने के लिए अपना यथासंभव सहयोग।
जी थैंक यू विनोद जी। आखिर में सत्येंद्र जी है हमारे साथ जबलपुर से, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपना एक संदेश हमारे श्रोताओं के लिए, रंगमंच के दर्शकों के लिए और रंगकर्मियों के लिए।
देखिए अरुण जी, मैं अर्पा के सुनने वाले सभी श्रोताओं को अपनी ओर से ये निवेदित करना चाहता हूँ कि ये जो नाटक है वो एक परस्पर विधा है दर्शकों और नाटककारों के बीच की।
जी
नाटककार अपनी पूरी शक्ति को निचोड़ कर अपने पूरे तन मन धन को निचोड़कर एक नाटक तैयार करता है और सिर्फ दर्शक दीर्घा के लिए होता है और दर्शक दीर्घा यदि नहीं है तो नाटककार और नाटक कुछ भी नहीं है। इसलिए कम से कम वो एक बार दो बार तीन बार अवसर दे नाटककारों को उनकी मंच पर अपनी उपस्थिति देकर फिर अपने ही सुझाव यदि उसमें कुछ सुझाव लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो वो अपने सुझाव देकर उस नाटक में जो चाहते हैं वो प्राप्त भी कर सकते हैं बाद में। वही मैं नाटककारों से यदि कोई दर्शक दीर्घा के बीच में कोई नाटककार है या कोई नया नाटक की ओर बढ़ना चाहता है मैं उससे भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने बीच में भी कुछ बच्चों को कुछ युवाओं को भले ही प्रैक्टिस के समय बिठाकर दिखाए कि ये कितनी गहरी और कितनी गंभीर प्रोसेस है जिसके बाद एक डेढ़ घंटे का नाटक करके निकल कर आता है तो दैट वो उसकी अहमियत को समझे। और नाटककारों से मेरा निवेदन है कि चाहे कुछ भी हो नाटक फ्री ऑफ कॉस्ट ना करें, भले ही 10 रुपए का अनुदान, 20 रुपए का अनुदान, सहयोग राशि कुछ भी ले, ताकि आने वाला ये हमेशा समझे कि वो जो जिसे देने आया है वो कीमत समझ सके, वो कीमत भले ही वो किसी भी तौर पर आके।
बिल्कुल जी, आप तीनों ने बहुत सही बात की। जैसे सत्येंद्र जी ने कहा है, दर्शक की सार्थकता क्या है वो समझना होगा। रायगढ़ से विनोद जी, उन्होंने बोला कि दर्शकों के टेस्ट को समझना होगा। शुभम जी सतना से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि नाटक में दो पार्ट होते हैं, एक निर्देशक का पार्ट होता है, एक दर्शक का पार्ट होता है। दोनों की अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है। उन्होंने ये भी बताया कि रोचक भी रहे नाटक, नाटकों में कुछ सरप्राइज भी रहे, वो सरप्राइज हर बार दर्शक को ज्यादा कनेक्ट भी करेगा और उनको जोड़ कर रखेगा और अगली बार आने के लिए मजबूर भी करेगा। सारी बातों के साथ में बात अभी भी वहीं पर है कि दर्शकों को समझ पाना हमेशा की तरह अभी भी असंभव ही है। दर्शक को हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि कोई दर्शक या दर्शकों का जो समूह है उनको क्या पसंद आएगा और क्या ना पसंद होगा। ये जरूर है इन सब चीजों के बीच में कि दर्शकों का मनोरंजन होता रहे और ज्यादा से ज्यादा दर्शक रंगमंच के साथ दर्शक दीर्घा में जुड़ते रहें, ये बहुत जरूरी है। अंत में बस इतना ही कि हम चाहे जिस तरह का भी नाटक करें, जो भी नाटक करेंगे वो सब दर्शकों के लिए ही होगा। हम सबको रंगमंच के दर्शकों का इंतजार है, तो आप सब जरूर जुड़ें।
इस बात के साथ हम आज की टॉकचीत को यहीं विराम देते हैं, अगली टॉकचीत तक। मैं अरुण भांगे अरपा रेडियो की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और हम दुआ करते हैं आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। थैंक यू सो मच।